बिहारी जी एवं श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के चरण कमल में प्रणाम करके आज मैं भगवान नृसिंहदेव के आविर्भाव के प्रसंग का कुछ आस्वादन करने की चेष्टा करूंगा आप समस्त भक्तों के बीच में। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है आज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है, इसे नृसिंह चतुर्दशी भी कहते हैं। तो आज के दिन भगवान नृसिंहदेव इस जगत में आविर्भूत हुए थे और एक बहुत बड़ी आसुरी शक्ति का विनाश भगवान ने किया और अपने भक्त की रक्षा की। बहुत ही मंगलमय दिन है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस दिन भगवान इस प्राकृतिक जगत में प्रकट होते हैं और विशेष करके इस पृथ्वी पर, तो यह दिन इस पृथ्वी के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए बड़ा शुभ दिन होता है। जैसे घर का स्वामी मालिक, मान लीजिए कहीं बिजनेस कर रहा है, दुकान या सर्विस कर रहा है और वह अपने घर जब लौटता है तो स्वामी का घर में लौटना पत्नी के लिए बच्चों के लिए बड़ा मंगलमय दिन होता है। बच्चे अपेक्षा करते हैं कि हमारे पिताजी हमारे लिए यह वस्तु लाएंगे, पत्नी भी अपेक्षा करती है कि हमारे पति देव हमारे लिए यह लाएंगे, हमारा सुख दुख पूछेंगे। बहुत काल के विरह के बाद पत्नी को जैसे अपने पति के संग मिल करके और उनकी प्रेममयी बातें सुन करके उनका उपहार पाकर के जैसे आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही यह पृथ्वी धन्य हो जाती है जब भगवान आते हैं इसका दुख मिटाने के लिए। अन्यथा और लोग तो केवल पृथ्वी का दुख बढ़ाते हैं। आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतार लेते हैं, एक यह भी कारण है भू भारा अवतारणा, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो आज का यह चतुर्दशी का दिन सबके लिए मंगलमय है, तो इस दिन भगवान क्यों आविर्भूत हुए और किस तरह प्रकट हुए यह लीला मैं श्रीमद् भागवतम से कह रहा हूं। निकट चल रहा हूं और प्रयास करूंगा कि आप डायरेक्ट संस्कृत समझते हुए चलें। कुछ अभ्यास मिले कि सुखदेव गोस्वामी किस तरह बोलते थे और परीक्षित महाराज कैसे सुने थे भगवान नृसिंहदेव के विषय में। तो सुप्रसिद्ध घटना है कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद महाराज थे, वो आज भी हैं, जब 5 वर्ष के बच्चा थे तो उनको गुरुकुल में भेजा गया, असुर गुरुकुल में। उत्तर करके और लगभग 9 महीने के बाद लौटे तो पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि बेटा तुम अपने टीचरों से गुरुजनों से जो कुछ सीखे हो उसमें से तुमको क्या अच्छा लगा। प्रत्येक पिता जानना चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ रहा है सीख रहा है तो उसे कौन सी बात अच्छी लगती है। तो हिरण्यकश्यपु वास्तव में यह सुनना चाहता था कि उसका बेटा ये बोलेगा कि अपराधियों को पकड़ना, दंड देना और शासन करना, राजा बनना ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो यही सुनना चाहता था। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा कि पिताजी हमारे समय से तो सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि घर गृहस्थी जो है अंधकूप है, इसमें पड़ा हुआ जीव बहुत दुख भोग रहा है, इसे छोड़कर वृंदावन चला गए व्यक्ति और भगवान कृष्ण का आश्रय लो, यह मुझे अच्छा लगता है। अब हम कष्टों के लिए ये बात बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि हम कष्टों अपने बच्चे पर क्रोधित नहीं हुआ, उसका क्रोध हुआ गुरुओं पर। उसने सोचा कि ये गुरु लोग यहां ले जाकर के कृष्ण भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, गुरुपुत्रों पर जो शुक्राचार्य के पुत्र थे उन पर वो बहुत क्रोधित हुआ और कहा कि तुम लोग ठीक से बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, क्या संगत विधार जताने वाले गुरु जो है बुझाते हैं, गुरु जो है स्कूल में बच्चे को संगत पढ़ाओ, जैसा सिलेबस बनाया गया है उसके अनुसार पढ़ाओ, ये क्या बोल रहे हैं? सुनो तुम लोग, गुरुपुत्रों से बोल रहे हैं, वही लोग पढ़ा रहे थे। शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप के गुरु थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र थे, संघ और अमरक दोनों का नाम। तो उसने कहा कि आप लोग ठीक से पढ़ाओ, हमें लगता है कि कोई न कोई वैश्य हमारे स्कूल में आ रहा है, नहीं तो ये बात कहां से? नहीं, पहले गुरुपुत्रों ने कहा सरकार हम नहीं पढ़ाए हैं इसको, यह अपने आप ऐसी इसकी बुद्धि है। हमें कस्तू कहा ना, अपने आप ऐसी बुद्धि हो नहीं सकती। ये वैष्णव लोग खासकर के इस काम वाले बहुत ठीक जानते हैं, तो ये जानते नहीं है, कर्मों के बीच में प्रचार करते हैं। तो इस तरह से हमने कस्तू बोला, छद निर्देश में ये वैष्णव लोग प्रचार करते हैं, कोई न कोई जरूर स्कूल प्रोग्राम किया होगा, नहीं तो ये बच्चा कैसे जान गया? उसको पता नहीं था कि घर नहीं सीख लिया है, वास्तव में उसके स्कूल में कोई वैष्णव नहीं गया था, लेकिन हमें कष्टों को इस बात की शंका है, ले जाओ समय के रूप से सिखाओ, नहीं तो विष्णु के दास वैष्णव लोग आया करते हैं स्कूल में। ठीक है, वो लोग ले जाए, ले जाकर प्रहलाद महाराज से पूछे, मुक्त डर गए कि बाप रे बाप, आज मैं कभी बच गए, राजा बहुत क्रोधित नहीं हुआ। चलो फुसला फुसला करके उस बच्चे से पूछने लगे, प्रहलाद वत्स भद्रम पे सत्यम कथय मानसा, बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार, तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा, सत्यम कथय मानसा, तुम सत्य सत्य बोलो, झूठ मत बोलना, अन्य बच्चों से तुम्हारी ये जो भूल बुद्धि हुई है ये किस कारण से हुई, कौन किया है, केवल नाम बता दो कौन आया था। उन लोगों को भी शंका हुई कि हो न हो कोई वैष्णव ग्रुप का आया था, कौन आया, किस दिन आया, केवल नाम बता दो, मैं भूल गुजरना किस राजा के पास, तो इस वैष्णव को मंगा करके चाहे फांसी पर चढ़ाए चाहे कुछ भी करे, बेटा हमारी नौकरी जाएगी, इसलिए बता दो। प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान चक्रपाणी हमारी बुद्धि को घुमा रहे हैं, वो लोग समझे नहीं, तो झूठ मत बोलो, चक्रपाणी तुम्हारे स्पेशल हो गए हैं, भगवान तुम्हारी बुद्धि को घुमा रहे हैं, ऐसा मत कहो, कोई न कोई मनुष्य कोई न कोई वैष्णव आया होगा। तो परंतु वो लोग समझे नहीं, उन्हें लगे दांत में, कहने लगे तुम असुरों के इस चंदन वन में बबून कहां से उत्पन्न हो गए, नालायक, सब लोग मांस खा रहे हैं, सब लोग इंटॉक्सिकेशन ले रहे हैं और तुम घर का शीर्ष कर रहे हो, इस तरह की तुम्हारी बुद्धि कैसे हो गई, असुर कुल में दाग लगा दिया, एक दिन ही एक घुट भी शराब नहीं पिया, कितने नालायक, और ऊपर से विष्णु की भक्ति की बात करते हैं। फिर कुछ नहीं कहते रहे प्रहलाद महाराज नहीं माने, फिर वो लोग पढ़ाए। तो अब साल भर के बाद हिरण्यकश्यपु के पास वो लोग लेकर के आए। उन लोग जो कुछ पढ़ाते थे प्रहलाद महाराज याद कर लेते थे, तो याद हो गया, हाँ याद हो गया, सुनाओ सुना देते थे, लेकिन मन से कभी अच्छा नहीं मानते थे, सुना देते थे तो वो लोग समझे कि हाँ अब ठीक हो गया, इस बार तो हम लोगों का प्रमोशन ही हो सकता है। तो ले गए बड़े खुशी के साथ प्रहलाद महाराज को, पहले अंतःपुर में भेजा गया कयाधु के पास, प्रहलाद की माता के पास। तो उसने प्रहलाद को स्नान कराया, खिलाया पिलाया, सजा करके अपने पिता के पास भेज दिया। हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ, गोद में प्रहलाद को लिया, उसके शरीर में रोमांच हो गया, आंखों में आंसू गिरने लगा स्नेह के कारण। और उसने पूछा कि बेटा, अब तक जो तुम गुरुजनों से पढ़े हो उसमें से उत्तम क्या है, सबसे श्रेष्ठ विद्या के लिए क्या पढ़ी, अभूतम पंचदोत्तम जो उत्तम अध्ययन किए हो, बेस्ट ऑफ एजुकेशन, तो क्या तुमने लिया, तुम्हारी दृष्टि में कौन सा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण का सेवनम अर्चनम बंधनम दासम सख्यम आत्म निवेदनम। इसको उन्होंने कहा, पिताजी यदि भगवान विष्णु के विषय में सुना जाए, कहा जाए, स्मरण किया जाए, उनकी अर्चना की जाए, वंदना की जाए, उनको अपना मित्र माना जाए, सर्वस्व समर्पण किया जाए, सेवा की जाए, तो मैं इसी को सबसे श्रेष्ठ अध्ययन मानता हूं। और वास्तव में प्रहलाद महाराज ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। हम लोग इस संसार में पढ़ लिख रहे हैं, चारों तरफ स्कूल हैं, कॉलेज हैं, कुछ न कुछ पढ़ाने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग, ज्ञान देने वाले लोग, लेकिन वास्तव में जब हम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उनके विषय में सुनते हैं, उनके प्रणाम करते हैं, और इस तरह से जब श्री कृष्ण के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं, हमारे प्रियतम हैं, हमारे बंधु हैं, तो इस जीवन में वास्तव में सबसे बेस्ट पढ़ाई यही है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यपु गुरुपुत्र पर बहुत क्रोधित हुआ, कहा कि अरे दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं कि तुम लोग मेरे से वेतन ले रहे हो और काम विष्णु का कर रहे हो, ये तुम्हारा बात क्या बोला, सुनो अपने लड़के को कह रहा है प्रहलाद को, मैं पूछा इसको तुम लोग साल भर पढ़ा करके लाए हो, और मैं पूछ रहा हूं कि सबसे बेस्ट एजुकेशन क्या है, तो ये कह रहा है श्रवण कीर्तन विष्णु, मैं वही पढ़ने के लिए भेजा था, इस बार तुम लोगों को सावधान किया था कोई वैष्णव आ रहा है, तुम लोग लापरवाही कर रहे हो, और तलवार निकाल लिया उन्होंने को मारने के लिए। वो लोग थर थर काटने लगे और कहने लगे, महत परमात्म पर परमात्म सुख बदत पवेंद्र सत्र नैसर्गिकीय मतुर स्वराज मोक्ष मन कदा समाना। हे राजन, हम लोगों ने इसे नहीं पढ़ाया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुम मैं मानता हूं तुम लोग नहीं पढ़ाए हो, लेकिन कोई वैष्णव आकर के पढ़ाया होगा ना, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिए। तो कहते हैं, मैं तरह तरह लेता हूं, हम 24 घंटा इसी के साथ रहते हैं सरकार, कोई वैष्णव नहीं आया इसके पास कभी भी, मैं तरह तरंतम दूसरे का सिखाया हुआ नहीं बोल रहा है, सुते भगवती पवेंद्र सत्र, ये आपका जो बेटा बोल रहा है कि हमने नहीं पढ़ाया, दूसरे ने नहीं पढ़ाया, नैसर्गिकीय मतुरस्वराजन, इसकी स्वाभाविक बुद्धि है, अपने आप दूसरे के प्रति इसकी भक्ति उत्पन्न हो रही है, हम क्या करें, जन्म से ही लगता है इसकी यही मति है, कोई नहीं पढ़ाया है, कोई नहीं सिखाया है, कभी भक्त योजना में इसको हम लोग भेजे नहीं, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं, तो अपने आप हो गया, हम क्या करें, आप क्रोध रोकिए, रोकिए नहीं तो हमारा हाथ अटैक कर जाएगा सरकार, हम लोग गरीब ब्राह्मण हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप तलवार हाथ से रख दीजिए, नहीं तो हमारी दुर्दशा हो रही है। तो उसको विश्वास हो गया कि ये लोग नहीं पढ़ाए। तो फिर प्रहलाद से पूछा, यदि तुम्हारी ये असती नति गुरुमुख से नहीं हुई है, गुरु के मुख से नहीं हुई है, तो कहां से हुई, बोलो, कौन तुमको सिखाया? तो प्रहलाद महाराज इस पर बहुत खड़े होकर के कहते हैं, मथुर में कृष्ण परतः स्वतोरा मुखे ही पद्यत गृह ब्रताना। जो लोग तुम्हारे जैसे इंद्रियों के गुलाम हैं और घर गृहस्थी को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान चुके हैं, इंद्रियों के भोगों को जिसको उन्होंने करोड़ों जन्मों भोगा है, इसी को फिर मनुष्य शरीर में भोगना चाहते हैं, पुनस पुनस चर्वित चरबराना, जिसको चबाया कई जन्मों में उसी को फिर चबा रहे हैं, बड़े बड़े राजा इस संसार के भोगे तृप्त नहीं हुए, तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति को, तुम्हारे जैसे व्यक्ति की मति न तो अपने आप कृष्ण में लगेगी, न दूसरे के सिखाने से लगेगी, और न समूह सिखा पाएगा, मिथ। तो हमारी जो मति कृष्ण में लगी है, इसका कारण है महिल शांताग्रजोभिषेकम, मैंने महान पुरुषों के चरण गज में स्नान किया है। हमारी जैसी बुद्धि बिना भक्तों के चरण गज में स्नान की नहीं मिल सकती है। और इतना सुना तो एक तो पहले से ही क्रोध था और दूसरे ऊपर से उपदेश कि तुम भी भक्ति करो। प्रहलाद महाराज निर्भय प्रेषण कर रहे थे कि तुम कृष्ण का भजन करो, क्यों दोषारोपण कर रहे हो, ये कर रहे हो। इतने सुनते ही वो गोद से प्रहलाद को पटक दिया क्रोध से, अभी गोद नहीं बैठे थे और पक्का फर्श था नारियल का, उस पर ले करके और फेंक दिया ऐसे, और कहा कि किसी भी उपाय से इसको मारो, ले जाओ हमारे आंख के सामने से हटा दो और किसी भी उपाय से इसका वध कर दो। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार आपका बेटा है, पुत्र है, इसको मारना ठीक नहीं है। हमारे कस्बे कहता है बेटा नहीं है, मेरा शत्रु है। तो उदाहरण देता है, देखो दूसरी जगह पर कोई वस्तु उत्पन्न होती है, जैसे जड़ी बूटी दवा है, अपने शरीर से नहीं उत्पन्न हुआ है, लेकिन अपना जब हित करता है तो दवा वो जड़ी बूटी औषधि, तो दूसरे जगह की जन्मी हुई औषधि को हम लोग अपना बना लेते हैं, ले लेते हैं, और जब अपना अंग भी सड़ जाता है, कैंसर हो जाता है, और वह अपने लिए अहित करता है, पीड़ा का कारण हो जाता है, तो अपना हाथ होते हुए भी उसे काट कर फेंक दिया जाता है, शेषम सुखम जीवति, जिससे कि अन्य अंग जीवित रहे। देखा जाता है ना, अपना पैर किसी का कटा हुआ है, लकड़ी का या प्लास्टिक का पैर लगा करके चल रहा है, तो लकड़ी या प्लास्टिक तो उसके देह से उत्पन्न हुआ नहीं था, जो दूसरी जगह उत्पन्न हुआ था। तो हमने कस्बे के कारण कहा से था कि मेरा पुत्र या मेरा बंधु ये है जो मेरे साथ चल रहा है, ये हमारा जन्मा हुआ पुत्र होकर के ही मेरा दुश्मन है, इसलिए इसको मारो, तुम लोग हमारे मित्र हो, ये तुम लोग हमारे पुत्र हो और मित्र हो, ये नहीं है। ये तो वैसे है जैसे शरीर में कोई व्याधि उत्पन्न हो जाती है और शरीर को ही खा जाती है। कहने के लिए कोई कहता है नहीं हमारा फोड़ा है, रहने दो, हमारे देह में उत्पन्न हुआ है, आत्मज है। कोई कहता है इस तरह की बात, हमें कस्ते भी बहुत बड़ा मेडिकल साइंस का ज्ञाता था, शरीर में ही तो घाव उत्पन्न होता है, रोग उत्पन्न होता है, लेकिन उसको हम चीर करके मवाद अलग कर देते हैं, जबकि हमारे शरीर में पैदा हुआ है, और बाहर की चीज ला करके हम शरीर में फिट करते हैं, लगाते हैं, ये कपड़ा पहने हैं, ये हमारे शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ था, लेकिन ये बेचारा साथ दे रहा है हमारा, इसलिए हमारा है। और जो शरीर में ही व्याधि उत्पन्न होती है तो उसको खत्म किया जाता है। तो इस तरह से यह हमारी पत्नी से उत्पन्न हुआ है, मेरा पुत्र है, लेकिन वास्तव में यह एक व्याधि है, महाव्याधि है, इसको समाप्त करो। तो लोग ले गए, समझाने लगे, डांटने लगे, नहीं प्रहलाद महाराज माने, तो इनको मारने का बहुत बहुत प्रयास किया। तो कथा इस प्रकार की है कि किसी भी उपाय से प्रहलाद महाराज की मृत्यु नहीं हुई, पर हिरण्यकश्यपु बहुत चिंतित हुआ कि ये मर क्यों नहीं रहा है, अब क्या करें, ये 5 वर्ष का बच्चा और किसी भी उपाय से मर ही नहीं रहा है। तो हिरण्यकश्यपु को शंका है कि हो न हो इसके विरोध से मेरी मृत्यु हो सकती, आखिर जीवित रहेगा तो मैं जो भी उपाय किया है इसको मारने का, तो इस सहना होने पर सब इसको याद आएगा और बदला लेगा। तो या तो ये भूल जाए मैं जो कुछ भी किया या मर जाए, दोनों में एक होना चाहिए। तो अब तो मर तो रहा नहीं है, हार गया किसी भी उपाय से, मर नहीं रहे थे प्रहलाद महाराज, वो चिंता करने लगा, कई दिन खाया नहीं सोया नहीं। तब ब्राह्मण ने गुरुपुत्र ने कहा कि राजा जी और मंत्रियों ने भी कहा कि छोटी सी बात के लिए आप इतनी चिंता कर रहे हैं, ठीक नहीं। अरे अभी बच्चा है ना, बच्चा है तो हरे कृष्ण कर रहा है, जरा सहना होने दीजिए, तब किसी लड़के में आसक्त हो जाएगा और अपने आप छोड़ देगा। अभी आप क्यों चिंता करते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ मनुष्य के विचार भी बदल जाते हैं महाराज, और बच्चे में गुरुदेश अब क्या देख रहा है, अब बच्चा कल सयाना होगा और मान लीजिए अगर अपने आप इसकी मति नहीं बदलेगी तो हमारे पिताजी आ रहे हैं, शुक्राचार्य जी आने वाले हैं, बहुत बड़े नीति के ज्ञाता है, वो इसको ब्रेन वॉश कर देंगे, वो इसको ठीक कर देंगे, समझा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, एकदम मत चिंता कीजिए, खाइए पिए पीजिए शासन कीजिए, इतना बड़ा राजा होकर छोटे लड़के के लिए आप इतने बेचैन हो गए। तो उसने कहा कि ये तो मरेगा नहीं, मैं विश्वास कर लिया, लेकिन ले जाओ तब स्कूल में इसका ब्रेन वॉश करो, ले जाओ ले जाओ, किसी भी तरह से इसका दिमाग बदलो। लेकिन ले गए, पूरा विश्वास था कि स्कूल में ये लोग अब उसकी कचित बदल देंगे, कृष्ण भक्ति छुड़ा देंगे। लेकिन एक दिन की बात थी, गृह कार्य में व्यग्र थे गुरु लोग, लड़के सब ऐसे खेल रहे थे, प्रहलाद महाराज सभी लड़कों को बुलाए। तो प्रहलाद महाराज चूंकि एक तो सम्राट के पुत्र थे और दूसरे बहुत प्रभावशाली थे, तेजस्वी थे, तो इन बच्चों को उन्होंने बुलाया, मीटिंग किया, कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, आओ सुनो, खेल कूद तो करना ही है, खेल छोड़ दो। तो सभी लड़के खेल कूद छोड़ दिए और आकर इकट्ठा हो गए। तो उन्होंने प्रवचन किया जो 2 अध्याय में भागवत में दिया गया है, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि है दुर्लभं मां समझन तदप्य धर्मार्थगम। बच्चों को इस तरह से सिखाया प्रहलाद महाराज ने, तो उसका क्या परिणाम हुआ, मैं यहीं से संस्कृत पढ़कर के कथा सुना रहा हूं। अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहे निर्वद्यत्वाद् नैव गुर्वं शिक्षितम्। अथ दैत्य सुता सर्वे, उस असुर विश्वविद्यालय में उस दैत्य के स्कूल में जितने भी बच्चे थे असुर के, अथ दैत्य सुता दैत्यों के बच्चे थे, और उनमें से जितने भी बच्चे थे सब प्रहलाद महाराज की बात सुने और प्रहलाद महाराज की बात को स्वीकार कर लिए। क्यों? निर्वद्यत्वात्, क्योंकि प्रहलाद का जो उपदेश था निर्दोष था, वास्तव में हित करने वाला था, वे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की बात बता रहे थे, इसलिए बच्चे तो अभी पलटेड नहीं थे, संसारिक विचारों का आवेश उन पर अभी नहीं हुआ था, इसलिए वे बहुत जल्दी स्वीकार कर लिए। और नैव गुरु अनिशिक्षितम, और गुरु लोग जो सिखाते थे संसारिक बात, धर्म अर्थ काम की, पैसा कमा करके ऐसे भोगना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, जैसे आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, उसको नहीं ही स्वीकार किया, नहीं ही स्वीकार किया कोई भी लड़का। इसका अर्थ यह है कि दूसरे दिन जब क्लास लगा, अलग अलग टीचर जब पढ़ाना चालू किए, तो लड़के बेंच पीट पीट कर कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भाई एक दो बच्चा अगर इस तरह से करता तो उसको डांटते पीटते, और सारे लड़के हरे कृष्ण कर रहे थे। प्रहलाद की बातों में आ गए, अथ दत्त सुता सर्व श्रुत्वा तद अनुवर्णितम जग्रहुर निर्वद्यत्व नैव गुरु अनुशिक्षितम। गुरु लोग चाहे कितना भी डांटे सिखाए, हम लोग वो लोग कहते थे हम राजा के पास पकड़ कर ले जाएंगे, सबको पीटा जाएगा, अगर कोई भी इस तरह से विष्णु का नाम बोला तो सबको पकड़ कर ले जाएंगे। तुमको पता नहीं है कि धर्म निरपेक्ष राज्य है और इसमें तुम भगवान का नाम ले रहे हो? और इस तरह से लोग डांट रहे थे लेकिन सर्वे अध्ययन जिसमें शब्द दिया गया दैत्य सुता सर्वे सर्वे दैत्य सुता प्रहलाद की बात स्वीकार कर ली। तो अब तक तो प्रहलाद अकेले भक्ति करते थे तो हिरण्यकश्यपु को इतनी चिंता थी और पूरा स्कूल ही चौपट हो गया तब तो इसको कितना दुख हुआ होगा। तो ये आचार्य लोग गुरु लोग जब देखे कि बच्चे सब एक मति हो गए, अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धि एकांत संस्थितां। आचार्य सुत मतलब शुक्राचार्य के पुत्र ने गुरु ने देखा क्या कि सबकी मति तेषां बुद्धि एकांत संस्थितां, एक में सबकी बुद्धि स्थित हो गई। प्रहलाद जो कह रहा है बस उसी को करने के लिए लोग तैयार, और दूसरा विचार रहा ही एक अंत संस्थित, एक अंत मतलब एकस्मिन कृष्ण स्थितान, सबकी मति केवल भगवान में रह गई। और प्रहलाद महाराज को गुरु माने, जब गुरु लोग कितने भी कहते रह गए उनकी बात नहीं माने, प्रहलाद की बात मानते थे, भजन करना चालू कर दिए। बच्चे थे ही कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मन भगवता में बात हृदय में भस गई, दो अध्याय में खूब अच्छी तरह से सिखाया है उन्हें, बोले भजन करने लगे और मांस मदिरा छोड़ दिए। जो भी नियम है एक शुद्ध व्यक्ति के उसका पालन करने लगे, भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लगे, हमेशा नाम जप करते थे, कहते थे कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, हमारे बंधु हैं, ये हैं वो हैं। तो वो आचार्य सुत मतलब शुक्राचार्य के पुत्र ये डर गए और इसकी सूचना तत्काल राजा के पास भेज, ले गए थे सुधारने के लिए, ब्रेन वास्ड करने के लिए ले गए थे, दिमाग धो देंगे पहला, नया दिमाग फिट करेंगे। तब तक प्रहलाद महाराज ही सबका ब्रेन वास कर, सभी लड़के ऐसे। तब तो वास्तव में इस स्थिति में टीचर का यही कर्तव्य था कि जितना जल्दी राजा को सूचना दे दे, नहीं तो राजा क्रोध करके और पहले तो टीचर का वध करेगा, इसमें संदेह नहीं था। इस बार अगर ये लोग नहीं जाकर कहे होते स्वयं, वो तो आते ही पहले उनका मस्तक तलवार से उड़ा देता, इसके बाद पूछता कि ये क्या हुआ। वो इतना विकट दायित्व था वास्तव, पहले जाकर के राजा से कहे कि महाराज वो तो स्कूल के सभी लड़कों को कृष्ण भक्त बना दिया, पता नहीं उसमें क्या शक्ति है, सभी उसके फॉलोअर हो गए, हम क्या करें, हमारी मति काम नहीं कर रही। राज्य आवेदन जथा त्वरित, बहुत जल्दी गए, त्वरित तुरंत गए, राजा से जो भी घटना थी जैसे प्रहलाद ने प्रवचन किया था जैसे जैसे लोग बता दें कि सरकार हम लोग थोड़ा सा काम में फंस गए, सबको इकट्ठा किया और हम पर लेक्चर देने लगा, एक घंटा के लेक्चर हमें आधा घंटा के लेक्चर में सबको चौपट कर दिया। तो ये स्थिति है, हम क्या करें, इतना सुन करके बहुत क्रोध किया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रुत्वा तद प्रियं दैत्य दुस्सहन तनया में, अपने तनय का यह अनय मतलब अन्याय सुनकर हिरण्यकश्यपु उसको सह नहीं सका। कोपावेश चलत गात्र, कोप का आवेश हो गया। आवेश का अर्थ होता है प्रवेश। जब नख से सिख तक सब जगह क्रोध छा जाए तो उसको कोपावेश कहते हैं, क्रोधावेश। इतना क्रोध का उन्मेष हुआ इसके शरीर में कि चलत गात्र, इसका शरीर कांपने लगा क्रोध से, ओठ फड़कने लगा, हाथ कांपने लगा, पैर कांपने लगा। इस सबका अनुभव है कि जब क्रोध है शरीर में डोमिनेट करता है तो शरीर कांपने लगता है ना। पहले क्रोध मन में आता है और मन में आने के बाद वह आंखों पर आता है, पता है लात में आ जाता है, सब जगह क्रोध क्रोध, मनुष्य कांपने लगता है। तो इतना बड़ा बलवान व्यक्ति अपने पुत्र के इस अन्याय को, दुर्नीति को, अत्याचार को सुन करके क्रोध से आग बबूला हो, तब पुत्रम हम तो मनोबध है। अब तक हिरण्यकश्यपु यही सोचता था कि अपने हाथ से अपने बेटा को नहीं मारूंगा, दूसरे से मरवा दूंगा, लेकिन आज इसके मन में हो गया कि बस 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 इसको अपने हाथ से मारना है। तो पुत्रम हम तो मनोबध है, और मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि पुत्र है चाहे कुछ भी है इसका वध करना है, और तुरंत उसको बुलाया, जल्दी से जल्दी पकड़ करके लाया उसको। वे गुरु लोग गए एक आध पुलिस लेकर के, और वो लोग प्रहलाद को पकड़ करके लाए, पकड़ करके लाए। राजभवन में था सभा में, प्रहलाद महाराज तो प्रणाम किए, लेकिन वो क्रोध से बिल्कुल पागल हो रहा था। सबसे पहले उसने सिपाहियों को आज्ञा दिया कि इसको बांधो, और इसी खंभे में बांध। तो प्रहलाद को ऐसे बांधा गया, पीछे हट करके खंभा में बांधा गया, और इसके बाद वो तलवार लिया हाथ में डायरेक्ट मस्तक काटने के लिए। लेकिन क्रोध में मनुष्य कुछ पहले बोलता है तो हिरण्यकश्यपु पहले बोलना चालू किया। तो प्रहलाद महाराज को पहले गाली देना चालू किया, छिप्रा परुषया वाचा प्रहलाद मत बारहण। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज तिरस्कार के या गाली देने के योग्य नहीं थे, अत बरहण, लेकिन फिर भी वो बहुत कठोर वचन बोला, बहुत प्रकार की गाली दिया। एक क्रोध में जब व्यक्ति हो जाता है तो क्या बोल रहा है कुछ ध्यान नहीं रहता, बहुत बहुत गाली दिया। उस गाली को यहां सुखदेव गोस्वामी बोल नहीं रहे हैं क्या क्या कहा, खूब कठोर वचन बोला। और प्रहलाद महाराज को देख रहा था, आह इक्ष्मार पापे ने तिरश्चिन में चक्षुषा, प्रहलाद को सीधा नहीं देख रहा था, तिरछा से देख रहा था, तिरश्चिन में चक्षुषा, और पापे न पापी नजर से देख रहा था। पाप का है अर्थ जान मारने की सोच रहा था कि आज इसको समाप्त करके रहूंगा, इसको पाप दृष्टि कहते हैं। इतने बड़े महान भागवत पुरुष को प्रहलाद महाराज को खत्म करना चाहता था। यह है आसुरी विचार। जबकि प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जिनको जीना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के मन में जो कुछ भी है वो उस भाव का प्रचार करना चाहता है। तो प्रहलाद महाराज में कृष्ण भक्ति है, वे चाहते हैं कि जगत के सभी लोग कृष्ण के भक्त बने, उनका जीवन सुखी हो। लेकिन दूसरे तरफ सत्ता में बहुत बड़ी शक्ति है, आसुरी शक्ति, जो इसका विरोध कर रहा है, हिरण्यकश्यपु। ये ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं बहने देंगे कृष्ण भक्त, प्रचार नहीं होने देंगे। तो आज मूल प्रचारक को ही, फाउंडर आचार्य को ही मारने जा रहा है। ये हिरण्यकश्यपु का विचार है। तो देख रहा है प्रहलाद महाराज को किस तरह से तिरछे नेत्र से, टेढ़ी नजर से और पाप नजर से, पाप की दृष्टि से। इस प्रकार से वास्तव में मनुष्य संसार में जो कुछ भी व्यवहार करता है उसमें देखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवहार है। हम किसको किस दृष्टि से देख रहे हैं इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखने के लिए तो सवेरे से शाम तक सब लोग पता नहीं कितने हजारों हजार लोगों को देखते रहते हैं, लेकिन हजारों लोगों को देखने में दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए कोई ड्राइवर आगे आगे ड्राइविंग कर रहा है, पीछे वाला साइड मांग रहा है, और साइड देने में अगर वो देरी कर देता है आगे वाला ड्राइवर, तो ये ड्राइवर जब साइड पाता है तो उसके सामने जब आता है तो कुछ ऐसे देखता है। अब तो करे क्या, हो तो अपनी गाड़ी में आबद्ध है, लेकिन लगता है जैसे खा जाएगा, है ना, तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक दृष्टि बदल देता है इस तरह से। तो कई बार हम लोगों ने देखा, बिना मतलब के लोग गुस्सा में हो जाते, बिना मतलब के ऐसे क्रोध करते, और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी कम से कम दृष्टि का बाण चला करके चल देते। वो समझ जाए कम से कम ड्राइवर की ये क्रोध में है तो क्रोध में हो गए, कुछ किए नहीं तो बिगाड़े तो आते ना क्रोध आग है, आदमी जलता रहता जलता रहता। किसको किस दृष्टि से देखना चाहिए, शास्त्र बताता है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति। संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं सबको अपनी मां के समान देखना, कम से कम दूसरे की जो विवाहिता पत्नियां हैं उनको अपनी मां के समान देखना, और जो छोटी बच्चियां हैं उनको अपनी पुत्री के समान देखना। इस तरह से जो देखता है मातृवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्ठवत्, दूसरे का धन कहीं रखा हुआ है या पड़ा है रास्ते में या कहीं जैसे तैसे, उसको लोष्ठवत मिट्टी के ढेले के समान जो देखता है, और आत्मवत सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति, और दूसरे जीवों को जो अपने ही समान देखता है, जैसे हम अपने को सुखी करना चाहते हैं, तो इसी तरह से जब जिसको देखें जिसके बारे में विचार करें तो सोचो वो भी मैं ही हूं, इस रूप में वह सुखी रहे, वह स्वस्थ रहे, सफल हो, किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, किसी के प्रति मत्सरता न हो कि हमसे आगे बढ़ रहा है, ये हो रहा है, ये वास्तविक दृष्टि। यह सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु पाप दृष्टि से देख रहा था, जो पहले स्नेह दृष्टि से देखता था पाप दृष्टि से देखता है। दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व तो है, हमने देखा तो नहीं है लेकिन शास्त्र द्वारा लोक द्वारा सुना है कि मछलियां अपने अंडे को दृष्टि से पोसती, वो अंडे पर देखती रहती हैं, इसलिए बच्चा वो अंडा तैयार होता रहता है। दृष्टि में शक्ति, देखने में नहीं है लेकिन देखो मगर प्यार से ये ट्रक वाले भी बेचारे ये अपेक्षा करते हैं, देखो, देखना मना नहीं करना है लेकिन प्यार से देखो, प्रेम भरी दृष्टि से देखो। जैसे हम अपने पुत्र को अपनी पत्नी को देखते हैं, यह प्यार का मतलब कहने का मतलब स्नेह है, स्नेह भरी दृष्टि से। तो हिरण्यकश्यपु की दृष्टि में पाप भरा था, इस लड़के का वध करना इस तरह से देख रहा था। और प्रहलाद महाराज कैसे थे, वहां उसके सामने प्रस्रव अवनतम, प्रस्रव कहते हैं विनय को, विनय से वे झुके हुए थे अपने पिता के सामने, प्रहलाद महाराज प्रणाम करके और झुके हुए थे, और वह क्रोध से कांप रहा था। प्रहलाद के सामने तो बहुत बड़ा शरीर वाला असुर था, प्रहलाद बिल्कुल छोटे थे और हाथ जोड़कर खड़े थे, बद्धांजलि बद्ध अंजलि अंजलि बांधे थे दानतम, और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखे थे। अगर वह गाली दे रहा था तो ये गाली नहीं दे रहे थे, इसको दांत कहते, वाणी पर कंट्रोल था, हाथ पर कंट्रोल था। ऐसा नहीं कि अब उधर से बोल रहा है तो इधर ये भी गाली देने चालू करें, तुम डीमन हो, ये हो, वो हो, ऐसे हो। पुत्र का जो धर्म है वो पुत्रों को निभाना चाहिए हमेशा, हिरण्यकश्यपु जैसे पिता के सामने प्रहलाद महाराज बिल्कुल नम्र है। आजकल बच्चों में बहुत बड़ा दोष पाया जाता है कि ये लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं और कुछ भक्ति करने लगते हैं तो कहते हैं हमारा पिता तो राक्षस है और पिता के रोज कमाई खा रहे हैं, पिता राक्षस हो गए। कई बार हमसे कुछ लोगों ने पूछा है कि महाराज मान लीजिए पिता हिरण्यकश्यपु हो जाता, मैं कहा अरे भाई तुम्हारा बाप हिरण्यकश्यपु हो ही नहीं सकता है। हिरण्यकश्यपु होना बस एक ही व्यक्ति के भाग्य में था, वो बहुत दुर्लभ पद है। हिरण्यकश्यपु हो जाने का मतलब है कि अब भगवान ही मार सकते हैं, उसे दूसरा कोई नहीं मार सकता, और तुम प्रहलाद नहीं हो गए हो, दोनों ओर से देखो। लेकिन बस तुरंत पिताजी को हिरण्यकश्यपु बना देना है तो बाएं हाथ का खेल, वैसे है वैसे है। बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। प्रहलाद महाराज का आचरण में बोल रहा हूं, हाथ जोड़ करके खड़े हैं नम्र भाव से, सर्पह पदा हते और अवस्थितम, कितना भी क्रोध कर रहा था, मारने के लिए दौड़ रहा था, हाथ में तलवार लिया था, लेकिन प्रहलाद महाराज अवस्थितम निर्भय खड़े थे, परंतु नम्र भाव से खड़े थे। ऐसा भी नहीं कहे कि चलो मारो, जो कुछ करना हो करो, ऐसा भी नहीं कहो, बोले ही नहीं, चुपचाप खड़े थे। फिर भी हिरण्यकश्यपु उस तरह से क्रोधित हो गया प्रहलाद की न बोलने से, जैसे लगता था कि कोई व्यक्ति विषधर सर्प को पैर से मार दिया हो और वह पैर फुफकार, वह सर्प फुफकार मार रहा। कहीं सर्प में तो स्वाभाविक ही क्रोध होता है, श्वसन प्रकृति दारुण, वैसे ही हिरण्यकश्यपु तो स्वभाव से ही दारुण था, भयावह था, और ऊपर से जब उसके पुत्र ने इस तरह का अन्याय किया तो उसका क्रोध और बढ़ गया। जैसे सर्प स्वभाव से भयानक होता है, स्वभाव से ही फुफकार छोड़ता है, लेकिन उसको कोई पैर से मार दे तो और फुफकार छोड़ेगा और डसने की चेष्टा करेगा। इस तरह से हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने के लिए पहले डांटा, हे दुर्विनीत। प्रहलाद को सबसे पहले कह रहा दुर्विनीत, जबकि प्रहलाद महाराज विनीत है, विनीत का अर्थ है नम्र, और वो कह रहा है अरे उदंड, अरे अनम्र स्तब्ध, इस तरह का संबोधन दे रहा, अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन, अरे मंद बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि कितनी मंद है, तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम मेरी अगर आज्ञा पालन करोगे तो मेरे बाद तुम राजा बनोगे, कितना हैप्पी लाइफ तुम्हारा होगा, कितना सुखी रहोगे, लेकिन हाय हाय तुम्हारा भाग्य फूटा हुआ था, तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ था कि बाप के हाथ से ही मरेगा, हाय हाय ऐसा इतिहास में मैं कहीं नहीं सुना, तो पूर्व जन्म में तुम्हारा और इस जन्म में भी इतना बैड कर्म रहा है कि अपने बाप के हाथ से तुम्हें मरना पड़ेगा, क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे बुरे कर्म वाले लोग इस जगत में जन्म लेते हैं। कई पिता किसी को मार, कि पिता किसी पुत्र का वध करता है, लेकिन ये ऐसा दुष्ट है कि आज इसका वध मेरे हाथों से होगा, तो ऐसे बोल रहा है। कुल भेद कर, अरे कुल में भेद पैदा करने वाला, सभी कुल के लोग, हमारे कुल के जितने लोग हुए, सब कितने बड़े बड़े राजा हुए, शान के साथ भोगे, और तुम भिखमंगा का पथ अपना रहे हो। हमारे कुल में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो विष्णु से लोहा न लिया हो और विष्णु से मारा न गया हो, ये नहीं कह रहा है। हमारे खानदान की रीति रही है कि हम लोग विष्णु के विरोधी हैं, देवताओं के विरोधी, और हम लोग शान के साथ पूरी दुनिया के राजा रहते, स्वर्ग को अपने कब्जे में रखते, लेकिन तुम कुल की रीति बिगाड़ दिया, तुम अभी इन बच्चों को सिखा रहे हो हरे कृष्ण, अरे इनको कमाना सिखाना चाहिए, इनको कुछ टेक्नोलॉजी की शिक्षा देनी चाहिए, बेचारे भविष्य में कैसे जिएंगे, कैसे कमाएंगे, आगे चलकर विवाह करेंगे तो कैसे मेंटेन करेंगे परिवार को, नालायक तुमने सारा चौपट कर दिया, तुम इस तरह से सिखा रहे हो। यह है कुल भेद कर, कुल में भेद कर देना, कुल किस रास्ते पर चल रहा था तो तुम कौन सा रास्ता पकड़ लिए। कभी कभी लोक में भी लोग ऐसा कहते हैं, हमारे खानदान में कोई हरे कृष्ण पहले नहीं कहता था, वो नहीं कहता था तो तुम्हारा लड़का कुल भेद कर हो गया, कुल में भेद पैदा कर दिया और भगवान का भक्त हो गया। कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज हमारे परिवार में ऐसा कभी नहीं हुआ, हम कहते हैं तो हमेशा विपरीत रास्ते पर चल रहे थे, तो इसका मतलब कि अभी भी उसी पर चले हुए, उल्टा रास्ता पकड़ कर जा रहे थे, तो अब तो सही रास्ता पकड़ना चाहिए ना। कितनी सुंदर यह संस्था है और कितना सुंदर उपदेश है, वास्तव में सारे जगत में पहला प्रभाव आप देखिए, आहार शुद्ध होता है और आहार शुद्ध होने से ही सब शुद्धि होती। कोई संसार में ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है इस्कान के समान जो लोगों को इस तरह से शुद्ध शाकाहार और उस पर भी महाप्रसाद खाने की शिक्षा दे रहा है। कितने कितने लोगों का आहार सुधर गया और वे आज बहुत सुखी, और भी नियम आप सभी जानते, लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यपु जैसा महान राजा यह कह रहा है कि तुम हमारे कुल की रीति उल्टी कर दी, बिगाड़ दी, कोई विष्णु का भक्त नहीं हुआ था लेकिन तुम ऐसे बिगाड़, और उस पर भी अकेले भी ये भक्त, अकेले भी तुम भक्ति करते तब भी मुझे कम चिंता थी अब तो तुमने सबको चौपट कर दिया। कुल भेद कर, बहुत सुंदर शब्द बोल रहा है। प्रायः लोग चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कुल के नियमों का पालन करे। हम एक बार रथ यात्रा के लिए चंदा मांगने गए थे अपने गांव में, जब थे एक जगह, एक व्यक्ति ने कहा कि आप जाइए उस व्यक्ति से मांग लो, बहुत धनी व्यक्ति है। तो हम लोग गए तीन चार आदमी, वो शराब बेचता था, उसकी शराब की भट्टी थी, हम तो पहले नहीं जानते थे। तो गए तो हम पूछ दिए कि अच्छा आप इतने धनी हैं तो दूसरा धंधा भी कर सकते हैं, तब शराब क्यों बेचते हैं? तो उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, वो कहा कि महाराज हमारे खानदान में यही बेचते लोग आए हैं, इसीलिए मैं बेचता हूं, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, मुझे बहुत प्रिय है। वो कहा जबकि पीता नहीं है, एक घूंट भी नहीं पीता है, होली पर भी दिवाली पर भी लेकिन खंडा वो कह रहा था खानदान हमारा बेचा है इसलिए हमें बेच रहे हैं। खानदान के प्रति बहुत बड़ी ममता होती है, लेकिन पहले देखना चाहिए कि खानदान कैसा रहा है। हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यपु का खानदान रहा है कि किसी देवता का खानदान रहा है? खानदान को नवजीवन देने की आवश्यकता है, वास्तव बदलने की आवश्यकता है। और पूरा वंश खानदान यदि मछली खाता हुआ आता है तो क्या हम ही मछली खाएंगे? वो कोई कहता हम तो बंगाली हैं इसलिए हम तो खाते आए हैं, हमारे माता पिता खाते आए हैं, लेकिन क्या हमारे संस्था में बंगाल को भक्त नहीं है? बंगाल के ही व्यक्ति ने इस काम की स्थापना किया, सारे जगत में लोगों को शाकाहारी बनाया, लेकिन कोई ऐसा कह सकता नहीं हमारे लिए जरूरी है ये है वो है, कुछ जरूरी नहीं। तो जब भगवत भक्ति का प्रचार होता है तो कुछ लोग कहते हैं ये हमारे संस्था से विरुद्ध है, ये हमारे खानदान से विरुद्ध है, कुछ लोग कहते हैं ये हमारे स्वभाव से विरुद्ध है। आज ही मैं सुना, एक घर गया था तो पता लगा कि एक लड़का भाग गया घर से, इसलिए कि उसका कहना है कि जब देखते हैं तब ये लोग किसी न किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं घर के लोग, अरे वहां कीर्तन का प्रोग्राम है तो ये संडे का प्रोग्राम है तो ये हरे कृष्णा वो हरे कृष्णा हमको ही पसंद नहीं, तो बॉम्बे छोड़कर अपने गांव पर चला गया। उद्विग्न हो गए घर के लोगों से, घर के लोग सब कृष्ण के भक्त हो गए, तो मेल नहीं। इस तरह से हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद को कह रहा है तुम कुल भेद कर हो अधम, तुम अधम। अब प्रह्लाद से बड़ा कौन होगा, लेकिन उनको अधम कह रहा, स्तब्धम, और तुम अनम्र हो, झुकने वाले नहीं हो, मेरे शासन की अवहेलना कर रहे हो। निश्चय पद जनक क्षय, आज मैं तुमको जमराज के क्षय में भेज करके रहूंगा। क्षय का अर्थ होता है घर, निवास, जमराज जी जहां रहते हैं वहां भेज करके रहूंगा। तो जमराज के पास अभी मर कर जाता है, जीवित नहीं जाता है, इसका मतलब है कि आज तुमको मार दूंगा, आज जमराज के घर भेज दूंगा। इतना कहने के बाद भी प्रहलाद महाराज ये नहीं कह रहे थे पापा माफ करो अब नहीं हरे कृष्ण कहूंगा, ऐसे नहीं बोल रहे थे, फिर भी ये चुपचाप खड़े थे। तो फिर कहता है क्रोधस्य जस्य कंपन्ते त्रयो लोक सहेश्वरा, अरे मूर्ख, जब मैं क्रोधित हो जाता हूं तो मेरे क्रोध करने पर तीनों लोक के जो ईश्वर हैं इंद्रादि वे कांपने लगते हैं, भय हो जाता है कि हाय हाय अब हिरण्यकश्यपु क्या करेंगे। मैं क्रोध करता हूं तो वे लोग कांपते हैं, और मैं पूरा क्रोध में हूं फिर भी तुम इतना निर्भय क्यों हो, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। अरे अब भी ये साला भागता कहे तो मुझे संतोष होता कि चलो डर रहा है। इस तरह से वो कह रहा है, चाहे बाणी से क्षमा मांगता, चाहे भागता, चाहे आह करता, तो मैं कुछ संतोष करता कि चलो डर रहा है, लेकिन अभी तो वक्त बिल्कुल निर्भय है और खड़ा है, मरने से नहीं डर रहा है, क्या मैं कहूंगा। अपने क्रोध से वो और बिगड़ रहा था मैंने कश्यपु, तस्य मैं अभी तो मुझे शासन क्यों बलोत्तेगा, फिर मैं पूरा पूरा क्रोध में हूं, अब क्रोध करना कुछ भी बाकी नहीं रह गया है मेरे लिए। वो ऐसा समझ रहा है कि इतना क्रोध मैं कभी नहीं किया था, साधारण क्रोध करने पर तो तीनों लोग कांप जाता था, और जब मैं पूरा क्रोध किया हूं मेरा छोटा सा बेटा तनिक डर नहीं रहा है। तो फिर पूछता है किम बलोत्तेगा मत शासन, बोलो बोलो किसके बल से तुम मेरे शासन की अवहेलना कर रहे हो, मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो। उसको शंका हुई कि हो न हो कहीं से इसके बल की सप्लाई आ रही, कहीं न कहीं से इसका बल आ रहा है, शंका आखिर मर नहीं रहा है, डर नहीं रहा है, तो भयभीत नहीं है, तो कहीं न कहीं से इसका बल आ रहा। तो पूछता है किम बल, तुम्हारा क्या बल है, तुम्हारा बल कहां से आ रहा है, पता नहीं तुम इतना बल कहां से आ गया, क्यों निर्भय हो, क्यों नहीं मर रहे हो। तो पूछता है किसके बल से तुम मेरे शासन के अवहेलना कर रहे हो, बोलो बोलो किसके बल से। बार बार जब कहा तो प्रह्लाद महाराज कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवय बलम बलिनां चापरेशा ब्रह्मादयो यश परे वरे में स्त्री जन लमाए ब्रह्मादयो जन वसम प्रणीता। हे महाराज, देखिए राजन कह रहे हैं अभी भी प्रह्लाद महाराज कितना सभ्य है, अपने पिता को राजा कहकर कह रहे हैं, हे राजन न केवल में तो मेरा बल ही नहीं, भवतश्च राजन आपके भीतर भी जो बल है, जिस बल के द्वारा आप सारे जगत को जीत लिए हैं, वह बल भी भगवान विष्णु से आ रहा है। इसका मतलब था कि हमारा बल तो भगवान से आ ही रहा है, आपने जो बल है वो भी भगवान से आ रहा है। परे वरे में स्त्री जन्म मनाए, और चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो, बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, यहां तक कि ब्रह्मा जी ने शिव जी में इंद्र में जो बल है वो सब कृष्ण से आ रहा है, विष्णु से आ रहा है। तो उसी की व्याख्या करें कि वही ईश्वर है, वही समस्त प्राणियों में ओज शक्ति है, सह मनोबल है, समस्त बल के कंट्रोलर हैं, सब कुछ है, और वही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की सृष्टि करते हैं और शक्तियों द्वारा ही पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो उन्हीं भगवान से मेरा बल आ रहा है। तो इस पर हिरण्यकश्यपु कहा, अरे चुप नालायक, हमारा शत्रु हमको बल भेजेगा तुम्हारे भीतर भले उसका बल आ रहा होगा, हमारे भीतर उसका बल नहीं आ रहा है, हम इसको कैसे माने। वास्तव में यह अज्ञता है। जो भक्त हो जाते हैं वे इस बात को पहचान जाते हैं, कृष्ण पालन कर रहे हैं, जन्माद्यस्य जता, कृष्ण हमें भोजन दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, पृथ्वी दिए हैं। लेकिन जो अज्ञ हैं, अभक्त हैं, वे कह सकते हैं कि कृष्ण हमको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हम कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह से ये अंधता है। वास्तव में प्रहलाद महाराज के समान सत्य बात को रियलाइज करना चाहिए कि हम हमारा जो ही पालन पोषण हो रहा है भगवान कर रहे हैं, यहां तक कि हमारे आंख में जो पलक उठाने और गिराने की शक्ति है भगवान दे रहे हैं, हाथों में शक्ति दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, मत्तः स्मृति ज्ञान मतो हनमच, शरीर में शक्ति, मन में शक्ति, बुद्धि में शक्ति, सब भगवान दे रहे हैं। लेकिन हिरण्यकश्यपु कहा कि हाँ, मैं मानता हूं तुम्हारे भीतर उसका बल भले आ रहा होगा, लेकिन ये पागल जैसा मत प्रलाप करो कि हमारे भी बल का वही कारण है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा दुश्मन है विष्णु। अब इस प्रकार का विचार भगवान के प्रति होना, तो प्रहलाद महाराज इस पर अब कुछ कड़े भाषा में प्रीचिंग करते हैं। कहते हैं, जहिया सुरम भा मुनम तमात्मना समम मनो भत्सवसन की बुद्धि। सबसे पहले आप अपने इस आसुर भाव को छोड़िए, इस आसुर भाव को छोड़िए कि विष्णु आपके बैरी है। वास्तव में विष्णु ही सबके परम बंधु है, वही मां है, वही पिता है, वही सब कुछ है, वही स्नेह से पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप अगर विष्णु को अपना शत्रु समझ रहे हैं तो ये पिताजी आसुर भाव है। इस आसुर भाव को जही आप त्यागिए, खत्म कीजिए, तब आप समझेंगे विष्णु को। तो प्रहलाद महाराज को बर्दाश्त नहीं हुआ तो कहते हैं, इस आसुर भाव को जही छोड़िए, जहिया सुरम भाव मम तो मात, पहले आप अपना दृष्टिकोण बदलिए कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति। कोई वास्तव में शत्रु नहीं है इस संसार में किसी का, अपनी न जीती हुई इंद्रियों के अलावा और न जीते हुए मन के अलावा कोई किसी का शत्रु नहीं है। विष्णु आपके शत्रु नहीं है, आपका शत्रु है आपका मन जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और इस प्रकार से लगता है जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, चुप करो, चुप रहो, इस तरह की बात मत बोलो कि विष्णु शत्रु है। बिल्कुल उल्टी बात, जैसे कोई अपने खास पिता को कहे कि ये पिता मेरा शत्रु, इसने मुझे जन्म नहीं दिया, ये मुझे नहीं पिलाया खिलाया। और इस तरह की बात विष्णु के विषय में बोलना हिरण्यकश्यपु जैसा, वास्तव में बहुत घातक बात। तो इसलिए हम भक्तों का एक कर्तव्य बनता है कि वास्तव में प्रहलाद महाराज ने जैसे अपने पिता को उपदेश दिया, सिखाया, यदि वो सिखा नहीं लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज निर्भय सिखाए, इस तरह से सबको चाहिए कि वे विष्णु के स्वभाव का वर्णन करें, बतावे लोगों को, और लोग कृष्ण से प्रेम करें, विष्णु से प्रेम करें। नहीं तो विष्णु का पता ही नहीं है, पहले तो वो है कि नहीं है यही संदेह लोगों के मन में है, इसीलिए सब निराकारवादी होते जा रहे हैं। कोई शक्ति है, कोई ऐसा है, ये है वो है, एक अंदाजबाजी करना, ये इसीलिए हो रहा है कि लोगों की बुद्धि कम होते जा रही है संसार में दिन पर दिन। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस आसुर भाव को छोड़ो। सबसे पहले किसी को भक्ति सिखाई जाती है तो आसुर भाव छुड़ाया जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब भक्ति का उपदेश करते थे तो सबसे पहले कहते थे नो मीट ईटिंग, ये मीट ईटिंग आसुर भाव है।
ये चलता रहेगा तो हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये चार चीज बताते थे। तो इसको, इन चारों में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसका अंतःकरण दूषित रहेगा, गंदा रहेगा, और ऐसे गंदे दूषित अंतःकरण से, हृदय से भगवान को समझना कठिन है। इसलिए पहले प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी इस आसुर भाव को छोड़िए, और आपका शत्रु आपका मन है, आपकी इंद्रियां हैं जो आपके बस में नहीं। आपके समान पहले भी बहुत से जगत में असुर हुए, बहुत से दस्यु हुए जो सारे संसार को जीत लिए, पूरा विश्व उनके बस में था, लेकिन उनकी इंद्रियां उनके बस में नहीं थी, और सबको कंट्रोल कर लिए पूरी दुनिया को, लेकिन अपनी इंद्रियों को, अपनी जिह्वा को, अपने नाक कान को बस में नहीं कर सकते। वही हालत आपकी, और आप उल्टे यह कह रहे हैं कि विष्णु शत्रु है, विष्णु शत्रु है, ये है वो। ओ, अब मैं स्पष्ट समझ गया कि तुम मरना चाहते हो। पहले तो ये सोच रहा था कि हो सकता है जीना चाहता होगा, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं, व्यक्तम, स्पष्ट हो गया, व्यक्त हो गया, मृत्यु कामोसी, तुम मरने की अभिलाषा किए हो, इसीलिए तुम इस प्रकार का बकवास कर रहे हो। अब समझ गया कि तुम मरने पर लात दे दिए हो, तो तुम मरना चाहते हो। व्यक्तम तुम मृत्यु कामोसी योति मात्रम विकथ से, तुम अति मात्रम विकथ से, अब तुम अपने औकात से बाहर बोल रहे हो। अरे तुमको ये भी स्मरण नहीं है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, ये भी जरा याद करो। और कहते हो कि तुम असुर हो, ये असुर विचार छोड़ो, हमसे बड़े हो गए। और तुम अति मात्रा में बोल रहे हो, और वो अति मात्रा में क्या बोल रहे हैं, ये भगवान को कह रहा है कि भगवान हमारे शत्रु है, और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा विचार गलत है, तो अति मात्रा में हो गया। बताइए, तो अति मात्रम विकथ से, तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो, तुम यह कह रहे हो कि मैं अपनी इंद्रियों को नहीं जीता हूं, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना कि हिरण्यकश्यपु इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों के बस में है, और तुम इंद्रियों के विजेता हो। छी छी, बाप के सामने इस तरह कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, तुम अपने को जितेंद्रिय कह रहे हो। समझ गया तुम अब मरना चाहते हो। जो व्यक्ति मरणासन होता है, मरने का समय जब उसका आता है, तो उसके मुंह से ऐसी ही बेतुकी बातें निकला करती। इतनी इतनी गलत बातें निकलती, प्रहलाद महाराज के मुख से गलत बात निकल रही है, और हिरण्यकश्यपु अपने समय से बहुत सुंदर बोल रहा है। और वे कहते हैं कि विष्णु सबके बंधु हैं, सुहृद हैं, और तुम असुर भाव को छोड़ो, तो इसको कहता है तुम अब बहुत गलत बोल रहे हो। तो मुमूर्षुणाहि मंद आत्मन शिविर विप्लवा गिरा, जो मरने वाला व्यक्ति होता है उसके मुंह से ऐसे अटपटांग बात निकलने लगती है। अब मैं समझ गया कि तुम्हारे मरने का समय आ गया, और इसीलिए तुम इस प्रकार की उटपटांग बात बोल रहे हो। फिर कहता है, तुम विष्णु के भजन का उपदेश कर रहे हो मुझको और इन बच्चों को किए हो, जस त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा। अरे मंद भाग्य, क्षण भर में तुम मरोगे। तुम ये कह रहे हो, मेरे अलावा तुम दूसरा ईश्वर कह रहे हो, इस विश्व का नियंता कंट्रोलर तुम दूसरा मान रहे हो, और उसके भजन का उपदेश कर रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं, कौन है, कौन है वो ईश्वर जिसके तुम भक्त हो? मदन्य है, मेरे अलावा कौन ईश्वर है? मदन्य जगदीश्वर कौन असल, वो कहां है, कहां रहता है, पहले उसका पता बताओ, एड्रेस बताओ, कहां रहता है? मेरे अलावा अगर ईश्वर तुम स्वीकार कर रहे हो, वो कहां रहता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वत्र, वो सर्वत्र रहते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है कस्मात स्तंभे न दृश्यते, कस्मात स्तंभे न, अगर वह सब जगह है तो इस खंभे में भी है क्या, इस स्तंभ में भी है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं दृश्यते, हम तो देख रहे हैं, हमें वो दिखाई दे रहे। तो हिरण्यकश्यप कहता है मैं तो न दृश्यते, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा, मैं नहीं देख रहा हूं। प्रहलाद महाराज कहते हैं दृश्यते, और प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ रहे थे खंभे को देख करके, वो देख रहे थे वास्तव में भगवान नरसिंह देव को वो देख रहे थे प्रकट, और हम नहीं देखते हैं। अरे एक साधारण मशीन देखती है भीतर की बात को और दूसरे लोग नहीं देखते हैं, एक्सरे मशीन देख लेती है ना भीतर, और हम लोग नहीं देख पाते हैं तो प्रहलाद जैसा महान भक्त यदि भगवान को देखे डायरेक्ट साकार दिव्य स्वरूप भीतर, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। तो प्रहलाद महाराज भगवान को देखकर प्रणाम कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आनंद में थे, तो इसको शंका हो गई कि जरूर इसमें है, ये देख रहा है, बिना देखे तो इस तरह से कर नहीं सकता है। परंतु बारंबार हिरण्यकश्यप कह रहा है स्तंभ है ना, खंभा में वो नहीं है, हमें नहीं दिख रहा। प्रहलाद महाराज कहते हैं हमें दिख रहा, तो इस पर कहा कि ठीक है, आज ही तुम्हारे ईश्वर की सत्ता और भक्तों के प्रति करुणा की परीक्षा है, आज दिखा देता हूं। और इतना कहकर के तलवार निकाल, तलवार तो पहले से ही लिया था, हाथ में तलवार को तैनात कर लिया, बाएं हाथ में तलवार लिया, आज आज बता देता हूं। और उसने सोचा कि हो सकता है कि इसका भगवान या विष्णु इसमें छिपा होगा, तो उसने अपनी मुष्टिका से मारा उस खंभे पर, उस खंभा से, उस पिलर से उसकी मुष्टिका ज्यादा कठोर थी, वज्र भी विफल हो गया था उसके शरीर से, तो इसलिए मारा कि शायद विष्णु उसी में ध्वस्त हो जाएगा अगर होगा तो इसलिए मारा। देखिए दो विचार है और दोनों जस्ट विपरीत है। एक व्यक्ति कह रहा है नहीं है ईश्वर, वो भक्त की रक्षा नहीं कर सकता है, आज तुम्हारा जीवन गया, जिस ईश्वर के भरोसे तुम हो और बाप की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो, जो कि रियल ईश्वर है, तुम समझ सकते हो, देख सकते हो कि मैं किस तरह से जगत को कंट्रोल कर रहा हूं। और वास्तव में हिरण्यकश्यप ऐसा था, तो कह रहा है मैं ईश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं है, और तुम जिस ईश्वर के भक्त हो वो ईश्वर आज तुमको बचा ले, बस आज ही पता चल जाएगा कि वो है और तुमको बचा लेता है, बस तुम खत्म हुए। अंतिम बार चांस देता हूं प्रहलाद, अंतिम चांस देता हूं कि अभी भी तुम मेरा भक्त बन जाओ और छोड़ो विष्णु को, ये वहम है ये अज्ञान है, वो तुमको नहीं बचा पाएगा। प्रहलाद महाराज ने कहा वो निश्चित बचाएंगे और वो हैं। तब हिरण्यकश्यप मुष्टिका का प्रहार किया, बाम मुष्टि से मारा, दाहिने में तलवार लिया था, बाएं मुष्टि से मारा खंभे पर, तो खंभे पर जेव ही वो मारा जोर से, तेवी बहुत भयावह आवाज निकलने लगी, और वो कहां से आवाज आ रही है ये पता नहीं चल रहा था, सिंह के गरजने की आवाज, और इतनी जोर की आवाज हुई, इतनी जोर की आवाज हुई कि हिरण्यकश्यप गिर गया वहां बेहोश होकर के, बहुत जोर से आवाज हुई और कुछ पता नहीं चल रहा था कहां से आवाज आ रही है। और उस आवाज को सुने ब्रह्मा जी, सुने सत्यलोक में और सब देवता सुने, तो जिधर से आवाज आ रही थी सब लोग विमान से चले उधर, और लोग सोचने लगे कि अरे असमय में जगत का प्रलय होगा क्या, प्रलय काल में इस तरह की आवाज होती है ऐसे ही हम लोग बैठे हैं और अकस्मात बहुत बिहड़ बिहड़ आवाज होने लगे, तो हम लोग सोचेंगे मेरी क्या हो गया, बम गिरने लगा, क्या होगा, विनाश होगा, युद्ध होगा। तो ब्रह्मा आदि तो जानते हैं कि प्रलय काल में किस प्रकार की आवाज होती है, किस प्रकार की वर्षा होती है, किस प्रकार की आग लगती है, सब उनको अनुभव है। तो इस आवाज को सुने तो उन लोगों को हमारी विश्व का प्रलय होने वाला है क्या, प्रलय होने वाला है क्या, इस अवतार का पता उन लोगों को नहीं था। यह अकस्मात अवतार हुआ बिना नोटिस के प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। हाँ, ब्रह्मा जी आदि को कोई पता नहीं था, यद्यपि वे लोग ये जानते थे, भगवान ने कहा था ब्रह्मा आदि देवताओं को कि जिस दिन ये प्रहलाद को मारना चाहेगा उसी दिन मैं प्रकट होकर के उसको मार दूंगा, प्रहलाद को बचा लूंगा। देवता लोग कहे थे कि हिरण्यकश्यपु को मारिए मारिए मारिए, तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं मारूंगा, जिस दिन वो प्रहलाद को मारना चाहेगा उसी दिन मार दूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी देवताओं को पता नहीं था कि किस दिन मारेगा। तो इस तरह से देखिए, एक चैलेंज है वास्तव में वैष्णवों को, आज भी ये चैलेंज दिया जाता है, अरे क्या विष्णु के फेरे में पड़े हो, जीवन खत्म हो गया, वो क्या सामने आ रहा है, कभी आया है सामने, सुख दुख पूछा है, क्यों विष्णु के फेरे में पड़े हो, ये कर रहे हो कर रहे हो। तो इस तरह से हिरण्यकश्यपु यहां चैलेंज कर रहा है, और जब पत्थर पर मारा तो आवाज हुई, सब देवता लोग यहां आएंगे। अब ये कथा है, तलवार लेकर दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से खंभे पर मारा, तदैव तस्मिन् निनदोति भीषण बभूव जैनंद कटाह मस्फुटत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसी भयानक आवाज हुई देर तक कि उससे ब्रह्म कटाह, कटाह मैंने कौभर, ब्रह्मांड का कौभर फट गया उस आवाज, इतनी जोर की आवाज, बिल्डिंग आदि गिर गए होंगे, ये कौन सी आश्चर्य की बात, ब्रह्मांड का कौभर बहुत पक्का बनाया गया है और 7 कौभर हैं उसके, लेकिन ब्रह्मांड कटाह मस्फुटत, फाट गया। ऐसा इतनी भीषण आवाज हुई। यंगई स्वधिष्णो गतो त्वजा दया स्वधामा प्यमंग मेणिरे, जिस आवाज को सुन करके ब्रह्मा आदि यही माने कि अब हमारा लोक नष्ट होने वाला है, अब खत्म होने वाला है, ऐसा वो लोग मानने लगे। और हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र का वध करने के लिए अब पैंतरा भांजने लगा, वो तो आवाज सुना एक बार गिरा भी फिर उठ करके खड़ा हो गया, और अब उसको शंका हो गई कि अरे वो तो है निकट ही, वो ये नहीं समझ रहा है कि खंभा में है। लेकिन उसको उसका मन कुछ संकित हो गया कि वो अवश्य है, वो तभी वो आवाज दे रहा है। तो पुत्र का वध करने के लिए वो पैंतरा बनाने लगा, सामने तैयार होने लगा, और जिन ही पुत्र का वध करने जा रहा था तब तक खंभे को फाड़ करके नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो देखा तो अंतः सभायाम मददर्श तत्पदम वितत्र सुरजन सुरारी जुत्थता। तो भगवान खंभे से प्रकट हुए, फाड़ दिए खंभे को। ऐसे उस खंभे को फाड़ने की जरूरत नहीं थी, भगवान तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ऐसे प्रकट हो सकते हैं, लेकिन खंभा को विदीर्ण करके और प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए, सुखदेव गोस्वामी इसके कारण बता रहे हैं। सत्यम विधातुम निजभृत भाषित व्याप्तिम च भूते सखिलेषु चात्मन। भगवान यह दिखाना, अपने भृत्य की बात सत्य करना चाहते थे। पहला भृत्य तो प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज ने कह दिया कि मैं खंभे में भगवान को देख रहा हूं, तो प्रहलाद की बात सत्य करने के लिए खंभे से ही आए। और सनकादिक ने साप दिया था जय विजय को कि भगवान तुम्हारा वध करेंगे, तो इसलिए सनकादिक की बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। जब दूसरे भृत्य हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से इसने वर प्राप्त किया था कि मैं मनुष्य से न मरूं और पशु से न मरूं, तो अपने भृत्य ब्रह्मा जी के वचन की रक्षा करने के लिए भगवान न तो मनुष्य है, न नर है, न सिंह है, नर सिंह के रूप में वे प्रकट हुए। इसी तरह के कई भक्तों ने कई तरह से कहा था, सबकी बात को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए खंभे से।
तो अदृश्य तात्यक भूतरूप मुद्दहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानसम। उस सभा भवन में खंभा से भगवान प्रकट हुए, क्या थे? तो हिरण कश्यप देख रहा है न मृगम न मानुषम, न ये पशु है और न मानुष है, मनुष्य इस तरह से देख रहा। वो देखने में कुछ स्तंभित हो गया और देख रहा था तब तक तो वह रूप विकराल बढ़ने लगा बहुत जोर से उसके देखते देखते, और विकराल विकराल नाक और केसर गर्दन के बाल, विकट दांत और पर्वत की कंदरा जैसी नाक मुंह, इसे बहुत भयानक देखा। तो लगा विचार करने, सशक्तमेनम परितो पिपश्यन स्तंभस मध्यादनिर्जिहानम नायम मृगो नापि नरो विचित्रम। फिर वो सोचने लगा, रहे ये पशु नहीं है, तब मन यार ये पशु नहीं है ये नर है। तो फिर कहता है नायम नर, ये नर भी नहीं है ये पशु है। तो कहते न नर है न पशु है, न नर है न सिंह है, ये है कौन? क्यों ऐसा है? तो इस प्रकार से विचार कर ही रहा था तब तक भगवान का वह रूप और बढ़ा। तो सुखदेव गोस्वामी नृसिंहदेव के रूप का कुछ वर्णन कर रहे हैं, उसको सुनिए। मीमांस मानस समुत्थित उग्रता, वो मीमांसा करने लगा, तुरंत विचार करने लगा, क्या यही विष्णु है कि कोई दूसरा जीव प्रकट हो गया? ऐसा हमने कभी नहीं सुना था, ये दो जीव एक शरीर में मरा हुआ है, ये बंधा हुआ है, ये कौन है? ये भयानक। तब तक उसने देखा प्रतप्त चामी करचंड लोचनम, तपाए हुए सोने के समान आंखें थी और आंखों से इतना प्रकाश निकल रहा था कि सूरज का प्रकाश धूमिल हो गया उसके आगे। आप का अनुभव होगा कि यदि किसी प्रकाशित वस्तु के सामने उससे अधिक प्रकाश वाली वस्तु ले जाते हैं तो वह पहली प्रकाशित वस्तु धूमिल लगने लगती है, इतनी ज्योति थी भगवान के आंख में और तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थी। स्फुरत सटा केसर ब्रिजन भूतानम, और स्फुरत सटा, सटा कहते हैं सिंह के गर्दन के जो केस होते हैं, तो केसों को झटकार रहे थे बहुत जोर से, इस कारण से उनका मुंह और भयानक लगता था। और आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि जब केसों को भगवान झटकारते थे, केसर जिसको कहते हैं गर्दन के बाल को, तो उससे देवताओं के विमान धराशायी होने लगते थे इधर से उधर। विमान पर चढ़ने वालों का अनुभव है कि थोड़ा सा बादल से टकराने से, विपरीत हवा लगने से विमान किस तरह हिलने लगते हैं। तो लोग कहते हैं बेल्ट बांधो बेल्ट बांधो, ये करो वो करो। और भगवान नरसिंहदेव के केसर के गर्दन के केस की हवा से विमान इधर उधर होने लगते थे, देवता सब आए हैं जुट गए हैं आकाश में, और बादल तितर बितर हो जाते थे। प्रतप्त स्फुरत सटा केसर जृंभितानंद, और मुख कभी कभी भगवान नरसिंहदेव खोल रहे थे, जम्हाई ले रहे थे। आपने देखा होगा सिंह को जम्हाई लेते हुए चिड़ियाघर में, जब हाई लेता है तो उसका मुख बहुत बड़ा खुल जाता है, तो इस तरह से वो कभी कभी जमाई ले रहे थे। कराल द्रष्टम, विकराल दांत थे बड़े बड़े, करवाल चंचल छुरांत जिह्वम, और जिह्वा ऐसी थी कि उसका अग्रभाग तलवार की धार के समान पतली थी और बहुत कठोर लग रही थी। भ्रुकुटी मुखोल बड़म, उनका भ्रुकुटी और मुख बड़ा और भयावह, स्तब्धोर दुकर्णम, और उस सिंह के नरसिंहदेव के कान स्तब्ध थे और ऊपर उठे हुए थे। जब सिंह इस तरह से सावधान होता है तो उसके कान ऊपर होते हैं, पशुओं के कान ऊपर तब होते हैं जब वो सावधान होता है। तो अभी बहुत बड़े योद्धा के साथ युद्ध करना है तो भगवान के कान भी अभी खड़े हैं और ऊर्ध ऊपर की तरफ। गिरिकंदराद्भुत व्यातास्य नासम, और उनका मुंह और उनकी नाक पर्वत की कंदरा के समान भयानक लग रहे थे। हनुभेद भीषण विविष्प सत्कायम अदीर्घ पीवर। इतना बड़ा शरीर था नृसिंह देव का, ऊपर बादलों का स्पर्श कर रहे थे। अदीर्घ पीवर ग्रीवर वक्ष स्थल मध्यमल्पम, और छाती बहुत चौड़ी थी, कमर बहुत पतली थी, और छाती के बाद तो मनुष्य का आकार था, यहां से लेकर के सिंह का आकार था। सब इस तरह का जानवर अभी कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, चाहे आदमी नहीं उत्पन्न हुआ है, जिसके आधा पशु हो, आधा नीचे चार पैर हो और ऊपर आदमी जैसा टोपी लगाया हो, कुछ किया हो, ऐसा नहीं देखे ना। भगवान कभी भी कुछ भी बन जाएगा। अभी अभी कथा हुई कि भगवान अमृत बांटने के लिए स्त्री हो गए, और बांट करके फिर तुरंत गरुड़ जी पर चढ़े चतुर्भुज रूप से और चले गए। ये भगवान के गुण हैं, वो इस तरह प्रकट होते हैं। चंद्रांशु गौरव छुरपन तनुरु है, और भगवान नृसिंह देव के शरीर के जो रोए थे वे चंद्रमा की किरण के समान गौर वर्ण के थे। विश्व भुजानिक सतम नखाय धम, और चारों तरफ उनकी भुजाएं थी, वो अद्भुत सिंह थे। आप सिंह भी उनको नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर कई भुजाएं थी भगवान की, और उन भुजाओं में नख बड़े बड़े थे, वही आयुध का काम कर रहे थे। बहुत कठिन, हिरण्यकश्यपु के छाती को पत्थर कहा गया है, तो भगवान के नख को छेनी कहा गया है, उसको तोड़ने के लिए। तव कर कमल बरे नख मद्भुत सिंगम, आपके तव कर कमल बरे, आपके श्रेष्ठ कमल वर में नखम अद्भुत सिंगम। नख क्या है, उसके जो सिंह है नख का अगला भाग है वो अद्भुत है। दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृत, कैसे कहते हैं उसका मैं भूल गया, नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो उसके ऊपर वाले संस्कृत के श्लोक में कहते हैं, पहला श्लोक कैसे, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादाह्लाद दाई ने हिरण्य कशिपोस वक्ष शिला टंक नखालय। हिरण्यकश्यपु का जो वक्षस्थल है वो शिला है, और शिला पर जो आपका नख क्या है, टंक है, छेनी है। इस तरह फाड़ दिया भगवान ने, जैसे पत्थर को फाड़ देते हैं छेनी से, वैसे नख से फाड़ दिए थे छाती को, इसलिए इस लीला का स्मरण किया जाता है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि नखायुधम, नख के आयुध लिए, कई हाथ थे, केवल चार ही भुजा नहीं, कई भुजाएं भगवान नृसिंह देव के हैं, और सब में बहुत बड़ा बड़ा नख था। और नख जब हिरण्यकश्यपु को फाड़ सकता था, तो संसार में पर्वत आदि को फाड़ देना तो कोई बड़ी बात नहीं, हम लोगों का नख क्या ऐसा काम कर सकता है। ये कोई पत्थर पर मारे तो वो भी दर्द उत्पन्न हो जाएगा। नेल्स, आजकल की स्त्रियां बहुत लंबा लंबा नख बढ़ा करके हिरण्यकश्यपु में नृसिंह भगवान का नकल करती, ये ठीक नहीं है, भगवान को ही नख बढ़ाने देना चाहिए। पता नहीं कहां से फैशन आ गया वास्तव, ये बहुत बुरा है। पहले न हम लोग ऐसे कहीं नहीं पढ़ते हैं, न सीता जी का नख बढ़ा हुआ है, न राधा रानी का, केवल एक सुरपणखा थे जिसका नख सूप जैसा बढ़ा है। वास्तव में कहीं किसी भी स्त्री का नख इस तरह से बेढंगा बढ़ा हुआ नहीं है। तो पता नहीं किस हिरण्यकश्यपु को चीरने के लिए बढ़ाई है। तो भगवान के हाथ में नख ही आयुध थे, दुरा सदम। और उस समय इतना भयानक नृसिंह देव लग रहे थे कि उनके पास कोई नहीं जा सकता था। सर्व निजे तरायुध प्रवेक विद्रावित दैत दानव, अपने नख के आयुध से ही वे समस्त दैत्य और दानवों को भगा दिए। वो देख करके भयानक नाक है, जितने दानव थे सब चले भाग। और भी जब प्रहलाद महाराज को मारने जा रहा था तो दैत्यों की सभा लगी हुई थी, जब तमाशा चल रहा था ऑडिटोरियम में, तो वहां पर सब देख रहे थे, लेकिन जब नृसिंह देव का नख देखे तो सबकी टांग छूट गई, भाग चले के रे बाप इस तरह से। और लोग भाग रहे थे तो किसी की टांग पकड़ करके फेंक रहे थे नृसिंह देव, किसी को कुछ किसी को कुछ, इस तरह से देख। तब हिरण्यकश्यपु इस सेंस पर आ गया, बस बस यही हरि है, समझ गया ये हरि है, इसको मैं अब छोड़ नहीं सकता। जब समझ गया कि ये विष्णु है तो ढाल ले लिया बाएं हाथ में और तलवार ले लिया। तो ढाल इसलिए लिया कि अब ये आघात करेगा उसको रोकने के लिए। वीर हाथ में जब तलवार लेते हैं ढाल, तो ढाल का मतलब है प्रतिद्वंदी के आघात को रोकना, और तलवार का अर्थ है आघात करना। ये भाई कुछ इसको शंका है कि विष्णु हमको मारेगा, क्योंकि मैं इसके भक्त को मारने की चेष्टा कर रहा। तो एवं ब्रुवन वो बोलने लगा हिरण्यकश्यपु की, ओ इसी के हाथ से शायद मेरी मृत्यु होने वाली है, और ये मुझे मारने के लिए जन्म लिया है, प्रकट हुआ है, यही हरि है क्या? यही हरि है। तो वो भी दैत्य कुंजर था, दैत्यों में श्रेष्ठ था, उसे भय नहीं हुआ। इस दशा में भी भय नहीं हुआ, नहीं तो भय होता तो या तो चरण में गिर जाता या भागता, लेकिन भागा नहीं और न चरण में गिरा, कोई भय नहीं हुआ, वो खड़ा हो गया लड़ने के लिए। और लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह दैत्य भगवान के सामने ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रचंड अग्निपुंज के सामने एक फतिंगा लग रहा था, और वह फतिंगा यदि आग में कूदे तो उसे जलना है मरना है, इस तरह से तुलना कर रहे हैं। भगवान के आगे हिरण्यकश्यपु क्या है वास्तव में? कुछ भी नहीं, ये तो उनकी लीला है कि कुछ देर लड़े। नतब विचित्रम खल सत्य धामनी स्वतेज सायो निपुरा पिबत्तमा, भगवान के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके सामने हिरण्यकश्यपु कुछ नहीं था। तब वो लिया वेग से गदा, गदा लेकर के और वेग से घुमाया, और घुमा करके नृसिंह देव पर मारा। रुसा नृसिंह हम गदयो रुबे गया। देखिए इस तरह से लड़ाई हो रही है, कैसे कैसे हिरण्यकश्यपु वार किया भगवान पर, और भगवान कैसे उसको पकड़े मारे इसका वर्णन। तो सबसे पहले गदा से वार किया, तम विक्रमंतम सगदम गदा धरो, तो गदा से जब ही मारने जा रहा था भगवान को, ते ही भगवान उसको गरज कर पकड़ लिए। ऐसी आवाज दी कि उसकी आंख बंद हो गई, गदा चला नहीं पाया, और सगदम गदा के साथ भगवान पकड़ लिए, बिल्कुल पकड़ लिए। और वो छटपटाने लगा बिल्कुल भगवान मारे नहीं, केवल पकड़ लिए, बहुत कड़ा पकड़े थे। और इतस्तत वो छटपटा रहा था, और गदा से उस समय भी मारना चाहता था, हाथ में उसकी गदा थी, भगवान ऐसे पकड़े थे, वो छटपटा रहा था, मारना चाहता था। तो इसको तो कुछ देर तक भगवान उसको पकड़े रहे इस तरह से। तम विक्रमंतम सगदम गदा धरो महोर गंतर चितो जथाग्रही, तो जैसे गरुड़ जी किसी सांप को पकड़ लें, उस तरह से भगवान ने उसे पकड़ लिया अकस्मात। लेकिन उसका मनोबल न टूट जाए इसके लिए तुरंत छोड़ भी दिया। जब छोड़ दिया तो इसको विश्वास हो गया कि बस बस भाग्य हमारे पक्ष में, अब मैं इसको मार करके ही रहूंगा। लेकिन भगवान तो थोड़े काल के लिए छोड़े थे, और जब भगवान छोड़े तो देवता लोग ऊपर से हाय हाय करने लगे। वो लोग सोचे कि अरे भगवान की पकड़ से ही बाहर आ गया तो ये मरेगा नहीं। तो देवता लोग असाधु मानने लगे इसको, असाधु मन्यंत हृतव कसो मरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्णता। वे लोग लगे हाहाकार करने देवता लोग, अरे बाप रे बाप क्या होगा, भगवान के हाथ से बाहर आ गया है, इतना कठिन हाथ है, नख है, फिर भी उस पकड़ से बाहर आ गया, अब ये नहीं मरेगा। और ये भी मांग लिया, ओहो निजवीर संकितम, ये जो नरसिंह है हमारे पराक्रम से डर रहा है, डर करके छोड़ा है। बाप रे बाप, जो किसी गदा लेकर भगवान को मार रहा था ऐसे पकड़ में तो डर गए, डर करके छोड़ दिया। निजवीर जो संकितम मन्य माना, मान गया कि विष्णु मुझसे भयभीत हो रहा है, डर रहा है, इसीलिए दूर किया हमको। और तब सोचा कि अब इसको छोड़ेंगे नहीं। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक पर टीका लिखे हैं कि इसी तरह से भगवान एक चांस देते हैं सबको, एक चांस देते हैं, लेकिन लोग समझते हैं बस बस हम जीत गए, ये किए वो किए वो किए ऐसे किए, भगवान क्या है। तो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि भगवान विपरीत बोलने का चांस देते हैं और सोचने का। भगवान के विषय में सब लोग न जान पाए, भगवान की ये भी कभी कभी इच्छा रहती है, न जानने पाए मतलब बदमाश लोग न जाने भगवान के विषय में। तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को ये सोच करके नख से चीर दिए, तो उस समय भी हिरण्यकश्यपु बहुत भयावह दृष्टि से देख रहा था भगवान को, हाथ निकलने के बाद भी अभी जी रहा था। और बहुत क्रोध में भगवान पर देख रहा था व्याता, लेकिन इस तरह भगवान ने चीर दिया उसको और कोई निकट नहीं आ रहा था। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके भक्त ब्रह्मा आदि आकर के उनको माला पहनाते हैं, जय जयकार बोलते हैं, गर्भस्तुति करते हैं। यहां तो गर्भस्तुति का कोई सवाल ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं था। जब देखे कि प्रभु इस रूप में प्रकट हुए हैं तो वो लोग दूर से ही प्रणाम कर रहे थे, निकट नहीं आ रहे थे। भगवान इतना भयावह रूप बनाए थे, किसी का साहस नहीं हो रहा था निकट आने का। कौन आकर के भगवान को पानी के लिए पूछे, आसन के लिए पूछे, आसन स्वयं ही खींच करके बैठ गए। और माला कोई पहनाने नहीं आया तो आंत की माला निकाल कर पहन ली। सिंह के लिए तो आंत की माला स्वाभाविक है ना, और खून का फवारा उड़ा था रक्त, तो केसर पर, गर्दन पर, इधर उधर पीतांबर पर, नीचे छाती पर, सब जगह लग गया। तो सिंह का तो यही श्रृंगार है वास्तव में। वो अच्छा लग रहे थे भगवान, बहुत सुंदर लग रहे थे, और उनका क्रोध रुक नहीं रहा था, अपने जीभ से अपना जबड़ा चाट रहे थे। और अश्री लवाकता ऋण केशरानो, सब जगह खून लगा था, आंत्र माली और आंत की माला पहन लिए थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि भगवान अपने से माला पहन ले, लेकिन यहां पर अब कोई आ ही नहीं रहा है। और उस स्वरूप के अनुकूल माला आंत की ही माला होगी, कितना भयावह लग रहा होगा। हिरण्यकश्यपु की आंत की चौड़ाई भी कम से कम कई लाख योजन होगी, और लंबाई तो कहना ही नहीं। उसको लपेट लिए, भयावह लग रहा था, कौन निकट आ गए। और इसके बाद वहां से उठे, और उठ करके जहां तहां असुरों को पटकने लगे, पैर पकड़ पकड़ करके, और चीरने लगे नख से, किसी को उठाकर पटक देना, किसी को कुछ करना, सब उसमें से बहुत लोग तो मर गए और सब भाग गए। और इसके बाद भगवान जब अपना केस झटकारे तो उससे विमान इधर उधर होने लगे, और जब गरजे तब आपने सुना कि ब्रह्मांड का कटा फट गया था, और जब पैर से चले क्रोध में तो पृथ्वी डगमग करने लगी, अति पीड़िता पृथ्वी कांपने लगी, शैला समुत्पेतु, और पहाड़ ऊपर उछलने लगे जो इस पृथ्वी पर थे। भगवान चल रहे थे मारने के लिए, घूम रहे थे इधर उधर, और उनके तेज से, आंख के तेज से चंद्रमा सूर्य की ज्योति फीकी हो गई। इसका मतलब कि अब धीरे धीरे अंधकार होने लगा था, यही टाइम था जब वो मार रहे थे असुरों को। तो तब न चंद्रमा सूर्य की ज्योति फीकी कही जा रही है। तो इस प्रकार से भगवान लीला किए और अब आकर के राजा का जो आसन था मूल आसन आकर के बैठ गए, कोई आसन दिया नहीं। इस पर बहुत से आचार्यों ने टीका किया है कि एक असुर के आसन पर भगवान क्यों बैठे। वास्तव में भगवान भीतर से ये सोच रहे कि मेरे भक्त का आसन इस पर वह बैठा है तो वो तो बड़े स्नेह से बैठ रहे हैं, लेकिन बाहर से देखने में लग रहा है कि कोई नहीं बैठने को कह रहा है, तो जो आसन मिले बैठ जाओ तो अपने से माला पहन लेना, अपने से आसन लगा लेना, आकर के आसन पर बैठ गए। और बैठ गए तो वहां एक भी असुर का पता नहीं, तो वो तो सब मरे भागे, वही लाश पड़ी हुई थी। हिरण्यकश्यप के घर का कोई नहीं आ रहा था और भगवान के पार्टी के जो लोग हैं देवता वो भी नहीं आ रहे थे। अब क्या हो यहां पर वर्णन है कि अब देवता लोग दूर से ही प्रणाम करना चालू किए, दूर से, थोड़ी दूर पर थे, बहुत दूर नहीं थे, नाति दूर हम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन निकट नहीं आ रहे थे। तो भगवान ऐसे बैठ करके आसन पर और देख रहे थे सांस के साथ। तो जिस पर दृष्टि डालते थे वही कहता, सरकार मैं आपका सेवक ब्रह्मा हूं, रहस्य हूं। तब तक रुद्र पर दृष्टि डालते हैं, रुद्र स्तुति करते हैं, इंद्र स्तुति करते हैं, गंधर्व लोग, जक्ष, किन्नर, नाग, सब लोग जिस पर दृष्टि डालते थे वो मैं आपका सेवक हूं, ऐसा आपने बहुत अच्छा किया, इसको मार दिया। ये तीनों लोग का मस्तक ज्वर था, हेडेक था, वास्तव में मर गया, हम सुखी हो गए। पितर लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि हमारे संतान हमको जब तिल और जल देते थे तो यह पी जाता था, तो आज इसका पेट फाड़ कर आपने हमें लौटा दिया, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें लौटा दी। सब लोग सुखी हुए वास्तव में। और तो और प्रहलाद महाराज ने भी कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ, इतना तक कह दिया। तो सभी देवता स्तुति कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे कि अब भगवान खुश होंगे, अब किसी को कहेंगे कि आओ निकट आओ, लेकिन किसी को नहीं कहे और न किसी की हिम्मत हो रही थी। तो ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि माता जी आप जाइए, भगवान को शांत कीजिए, बहुत परिश्रम किए और कुछ खान पान होना चाहिए, कुछ प्रसाद होना चाहिए, बहुत परिश्रम किया, आप जाइए शांत कीजिए, क्योंकि कितना भी वो दंड पति हो स्त्री के सामने तो उसको ठंडा हो ही जाना है, तो आप जरा जाइए इनको ठंडा कीजिए। लक्ष्मी जी भी बड़े गर्व के साथ चली, तो सामने से उतना नहीं, निकट से नहीं देखी थी, जब चली शान के साथ कि हाँ मैं इनको ठीक कर दे, और जब वो गई तो भाग आयो कहती ना ये हमारे पति नहीं है ना, हमको विश्वास नहीं है, ये खा जाएगा, सिंह खा जाएगा हमको, ये करेगा, कहीं झपट्टा मारा एक थप्पड़ भी तो हमारी तो हालत बिगड़ जाए। वास्तव में लक्ष्मी जी भाग आई कि ना अगर हमारे पति भी है तो इस समय दूसरे मूड में है, हम इस समय नहीं, इस समय उनके पास जाना ठीक नहीं, और वो चली आई। तो अब किसकी हिम्मत हो। तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज से कहा कि बेटा ये तो जानते हो कि तुम्हारे कारण भगवान क्रोधित हुए हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं, और तुम जाओगे तो ये निश्चित शांत हो जाएंगे, जाओ देखो शांत करो, हम सब लोग भगवान की पूजा करें, इनको कुछ खाने को दें, स्तुति करें, ऐसा रूप हमने कभी नहीं सुना था, देखा था भगवान का ऐसा दिव्य अवतार, तो तुम जाओगे तो शांत हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज गए, उनको कोई भय नहीं हुआ, कोई भय नहीं हुआ। जैसे कहा गया है, श्रीधर स्वामी ने लिखा है अपनी टीका में कि सिंह का बच्चा अपने पिता सिंह के पास जाने में डरता नहीं है, और पिता जो सिंह है या माँ है वो उसके लिए भयावह नहीं है, वो दूसरे जानवरों के लिए भयावह होता तो बच्चा जाकर के सिंह के मस्तक पर बैठता है, उसके मुंह को अपने मुंह से चाटता है, एकदम निर्भय होकर। तो प्रहलाद महाराज तो इस रूप में देख रहे थे कि हमारे पिताजी हमारे सब कुछ, वो कोई भय नहीं, वो जानते थे भगवान का स्वभाव कि हमें खाएंगे नहीं, ये तो हमारी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। तो वे गए, एक माला लिए
माला लेकर के और गए, कोई भय नहीं हुआ, सब देवता देख रहे थे कि बच्चा जा रहा है भगवान के पास। वे गए, ऐसे माला लेकर खड़े हो गए, तो भगवान झुके, माला पहन लिए और इसके बाद प्रहलाद को उठाकर गोद में रख लिए और गोद में रख करके उनको चाटने लगे, जैसे सिंह चाटता है अपने बच्चे को, ये विष्णु पुराण में लिखा गया है। और चाटने लगे, चाटते चाटते भगवान ने प्रहलाद से कहा कि बेटा प्रहलाद, मुझे बहुत खेद है, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं कि मैं बहुत देर करके आया, तुमको बहुत कष्ट दिया हिरण्यकश्यप। ये प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल गदगद हो गया और इसके बाद गोद से उतर करके भगवान को साष्टांग प्रणाम किए और स्तुति करने लगे, कहने लगे कि ब्रह्मा शिव और गंधर्व नाग नर ऋषिजन सभी कितनी सुंदर सुंदर स्तुति किए, लेकिन हे प्रभु, आप किसी की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए, तो मैं कैसे आशा करूं कि आप हमारी स्तुति से प्रसन्न होंगे, मैं तो ऐसे ही नीच जाति में जन्म लिया हूं असुर कुल में, लेकिन फिर भी आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने स्तुति की और भगवान प्रसन्न हो गए, बिल्कुल प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो सब देवता एकदम निकट आ गए, बिल्कुल निकट से, अब कोई भय नहीं था। और उसी रूप में अब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, आरती किया, भगवान के लिए प्रसाद दिया, यहां तक बातचीत भी होने लगी। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी जरा वर देने में सावधान रहिए, भागवत में लिखा गया है, आप जरा सोच समझ करके वर दिया कीजिए। इस दुष्ट को इतना वर दे दिए थे, आपको थोड़ा सावधानी से वर देना चाहिए। इस तरह से कहा। फिर प्रहलाद से भगवान ने कहा कि बेटा वर मांगो। प्रहलाद ने कहा कि आप यह वर दीजिए कि हमारे हृदय में कोई वर मांगने की इच्छा ही ना हो, कोई कामना मेरे हृदय में ना हो। लेकिन जब भगवान जाने के लिए तैयार हुए प्रहलाद का अभिषेक करके, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे एक बात मांगना चाहता हूं, वह यह कि मेरे पिताजी आपकी महिमा न समझ करके आपको बहुत गाली दिए, निंदा किए, और मैं आपका भक्त था, मुझे बहुत गाली देते थे, कृपा करके मेरे पिता का अपराध माफ कर दीजिए और उनको मुक्त कर दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। तो भगवान ने कहा कि पिता तो तुम्हारी दूसरी पीढ़ी में है, तुम्हारे 21 पीढ़ी के लोगों का उद्धार हो गया। जिस वंश में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म लिया है, कहीं भी किसी कुल में यदि कोई मेरा भक्त जन्म लेता है तो कुल पावन हो जाता है, तुम्हारा वंश पावन हो गया प्रहलाद, तुम्हारे पिता के विषय में क्या कहना, वो तो मेरे अंग संग से, मेरा चिंतन करने से और मेरे शरीर का स्पर्श, चिन्मय शरीर का स्पर्श करने से पवित्र हो गया, तुम चिंता मत करो। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज अंत में भी अपने पिता के प्रति स्नेह किए, चाहते थे मेरे पिता का उद्धार हो जाए, उनके मन में द्वेष नहीं था। तो आज के दिन भगवान यह लीला किए थे और ब्रह्मा जी से वे कहते हैं कि भक्तों पर कोई भी संकट पड़े तो उन्हें चाहिए कि मेरे इस रूप का स्मरण करें। भगवान स्पेशल संकट दूर करने के लिए ये रूप धारण किए हैं, बाकी रासलीला आदि करने के लिए तो कृष्ण के रूप में है ही, लेकिन भक्तों का कष्ट हरने के लिए नृसिंहदेव के रूप में, बहुत करुणामयी लीला भगवान की, स्नेहमयी। तो ऐसे प्रभु का हम लोग रोज स्मरण करते ही हैं, आज तो वही दिन है, तो यह स्वाभाविक है, तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि जगजीवन प्रभु जी, गुडाकृष्ण प्रभु जी हमें यहाँ आमंत्रित किए, श्री श्री राधा गिरधारी जी के चरण कमल में बैठकर भगवान नृसिंहदेव के गुणों के स्मरण करने का और प्रहलाद महाराज के गुणों का। बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबकी मति भगवान कृष्ण में लगी रहे, यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण।
कृष्ण नरसिंह भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, श्री राधा गोविंद स्वामी शील कृष्ण पाद की, ताई गौरा हरि ब्रह्मानंद
हरि हरि।
हरे कृष्ण।
नरसिंहाया दल्हा दल्हा दाईने हिरण्यकाशे पूर्वक्षः शिलटङ्कानखालाये इतन सिंह परतन सिंह यत यत यमि तत न सिंह बहेण सिंह हृदयेन सिंह न सिंह मदीन शरणां प्रपदे तव कर कमलवरेण कामधुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनु भृङ्ग केशव धृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर तनु भृङ्ग केशव तव कर कमल वरेण कामधुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनु भृङ्ग केशव भीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश केशव धीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे 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 स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी स्वामी जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बाल हरे बाल हरे बाल गौर हरे बाल नित्य गौर हरि बाल हरे बाल हरे बाल गौर हरि बाल नरसिंहदेव भगवान की जय। प्रह्लाद महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।